सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ कांगड़ा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप सभी के इस विशाल रूप में, इस समागम के रूप में दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा के दौरान तकरीबन सभी स्थान ऐसे हैं जहां पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका था, कहीं 10 वर्ष, कहीं 17 वर्ष, इतने लंबे अंतराल के बाद इन जगहों पर जा कर महापुरुषों के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। जहाँ पर इस निराकार दातार का आधार लेकर इस जीवन के सफ़र को तय किया जा रहा है, जहाँ पर प्रेम श्रद्धा भाव से युक्त होकर सभी संसार की शोभा बनाने में अपने योगदान दे रहे हैं, जहाँ पर सेवा के प्रति उत्साह हैं, तो इस तरह से ये पिछले चंद रोज़ बीते हैं। जब से दिल्ली से रवानगी हुई पिछले रविवार 13 तारीख को, लेकिन पहले जाना हुआ उत्तराखंड के मसूरी में और वहाँ एक दिन रहने के बाद सोलन से यात्रा ये हिमाचल की शुरू हुई, और जहाँ जहाँ पर भी, चाहे बिलासपुर हो, सोलन हो, सुंदर नगर हो या फिर हमीरपुर हो, इसी प्रकार से जोगिंदर नगर कल सत्संग करने का मौका मिला, तो सभी जगह पर इन पहाड़ी इलाकों में ऐसे सादगी के साथ भक्तजन विचरण कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसी सुंदर भावनाओं को मजबूती देते हुए उसको अभिव्यक्ति अपने कर्म के द्वारा देते चले जा रहे हैं, और जगह जगह पर रहने वाले भक्तजन वो इसी भाव से युक्त होकर संसार की इस यात्रा को तय कर रहे हैं। अनेकों प्रांतों में जाने का मौका मिलता है। साल भर में दिल्ली शायद 4 महीने ही रहना होता है और 7 से 8 महीने दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं, कहीं आसाम, कहीं बंगाल, कहीं महाराष्ट्र, कहीं गुजरात, कहीं राजस्थान, कहीं उड़ीसा, कहीं आंध्र, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं बिहार, झारखंड, कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा, अनेकों प्रांतों में साल भर में जाने के मौके मिलते हैं, और इसके अलावा विश्व के चंद मुल्कों में भी, जैसे इसी बरस फरवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जाने का मौका मिला, और अभी जून, जुलाई, अगस्त 2 महीने पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा में बिताने को मिले, और इससे पहले हिंदुस्तान में, जैसे दास ने कहा, कहीं उत्तराखंड का समागम हरिद्वार में जाने का अवसर मिला, और जबलपुर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का समागम, और रांची में झारखंड और बिहार का साझा समागम। इसके अलावा यात्राएं अनेकों शहरों की, कस्बों, गाँव की, ये लगातार चलती आ रही हैं और कई वर्षों से ये सिलसिले बन रहे हैं, और लगातार देखा गया भक्तजन उत्साहित हैं, जिस सच को प्राप्त करके खुद धन्य महसूस करते हैं अपने आप को, इसी सत्य से हर किसी को अवगत कराने के लिए जतनशील हैं, और युगों युगों से महापुरुषों ने, भक्तों ने, संतों ने संसार के ऊपर यही परोपकार किया है कि हे मानव, हे इंसान, इस जीवन के मनोरथ को जान ले, जीवन के लक्ष्य को जान ले और फिर उस लक्ष्य की पूर्ति कर ले। जीवन तू जी लेता है, उम्र भोग लेता है, दुनियावी सिलसिलों में उलझकर ये समय सारा गंवा भी देता है, अनेक को दुनियावी प्राप्तियां उपलब्धियां भी तेरे हिस्से में आ जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लक्ष्य था वो लक्ष्य से चूक जाता है। तो महापुरुष संत जन प्रेरित करते हैं कि इंसान ये लक्ष्य क्यों पाना है, अमोलक जन्म इसीलिए इस इंसानी जन्म को कहा गया है कि इस जन्म को पाकर मालिक ने हमें एक मौका दे दिया है। अंग्रेजी में कहते हैं कि यू हैव गॉट एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, यानी कि एक सुनहरी अवसर मिला है। इंसानी जन्म पाया, मालिक ने अवसर दे दिया, मौका दे दिया कि आत्मा अपने मूल की पहचान कर ले। आत्मा शरीरों में रह रहकर अपने आप को शरीर मान लेती है। इतने बड़े भ्रम में ये आत्मा परमात्मा की अंश होने के बावजूद, वरना कोई कहे कि परमात्मा की अंश और फिर भ्रम, लेकिन आत्मा को भी भ्रम लग जाता है। इस परमात्मा की जो निराकार है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, इसकी अंश होने के बावजूद ये भी भ्रांति में आ जाती है और शरीरों में रह रहकर शरीर ही अपने आप को मान बैठती है। तो महापुरुष कहते हैं कि इंसानी जन्म में इस मानुष तन में आकर इस आत्मा ने अपने असली अस्तित्व को जानना है, अपने मूल की पहचान करनी है, जानना है कि मैं एक ऐसे नूर की अंश हूँ जो शाश्वत है, जो कायम दायम रहने वाला है, जो जमीन जमा के बिखे समस्त एक ज्योत, जिसके बारे में कहा गया है, जलस्थ हुई थलस्थ हुई कि जल थल मैयल पूरिया स्वामी सृजनहार, कि मैं इसी के ही रूप, इसी का अंश हूँ, इसी का ही नूर हूँ। तो ये एक बोध प्राप्त करना आत्मा के लिए ये अवसर के रूप में है जब इंसानी जन्म मिलता है। इसीलिए बड़े भाग्यमान उस तन पावा। अभी भी आप रामचरितमानस से कई पंक्तियां श्रवण कर रहे थे कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि ये तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ यही कह रहे हैं कि बड़े भाग्यों से ये मानुष जन्म मिला है। तो ये भाग्य की बात इसी के साथ साबित होगी जब वो काम भी कर लिया जाएगा। जन्म पाया तो भाग्य की बात हो गई कि इंसानी जन्म मिल गया, लेकिन उसके बाद उन भाग्यों को पूर्णता कब मिलनी है? जब वो काम भी कर लिया जाएगा जिसके कारण बड़े भाग्यवान उस तन पावा। अगर वो काम ही नहीं किया, सारी उम्र बिता दी, ये जिस्म भी पा लिया, दो टांग वाला, चार पांव वाला नहीं, पीठ के पीछे दुम वाला नहीं, एक ये एक मानुष तन प्राप्त कर लिया, लेकिन तमाम उम्र जो कार्य करने लायक था वो किया ही नहीं, तो फिर कहते हैं कि इंसान भाग्य की बात थी तो तुझे जन्म मिला, लेकिन अब शर्मिंदगी है, अब तुझे लानत है कि इतना वायु भोग कर भी जो काम करने आया था वो काम किया नहीं, जन्म लिया इंसान का, पता नहीं भगवान का, वाह रे वाह तेरी बंदगी। कि एक जन्म लिया इंसान का और पता नहीं भगवान का, तो क्या तेरी बंदगी, क्या तेरा जीवन, जब वो लक्ष्य ही नहीं पा सका। जैसे फरीद जी जैसे सूफी संतों ने, महापुरुषों ने जो सामने भाव रखे थे कि तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खुगे काग, अजय सो रब ना बौड़े हो, देख बंदे दे भाग, कि ये शरीर इतनी आर्जा तक पहुंच गया कि जर्जर हो गया है, शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया है, इतनी लाचारी, इतनी कमजोरी आ चुकी है कि कोई पंछी भी आकर मांस को नोच रहा है तो उड़ाने की भी शक्ति नहीं है उसको। तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खुगे काग, अजय सौरभ ना बौड़े हो, देख बंदे दे पाग, यानी कि इतना मालिक ने मौका बख्शा, इतनी लंबी आर्जा भी दे दी, उम्र भी दे दी, लेकिन फिर भी अजय सौरभ ना बौड़े, अभी तक अज्ञानता का अंधकार बना हुआ है, अभी भी आत्मा ने अपने मूल को जाना नहीं है, तो देख बंदे दे पाग, यानी कि मंद भागा है हमारा। हम भाग्यवान उसको मानते हैं जिसकी जायदाद बन जाए, जिसका काम काज चल निकले, जिसका शरीर रिष्ट पुष्ट रहे, तो अक्सर कहते हैं बड़ा भाग्यवान है। लेकिन महापुरुष संत जनों की परिभाषाएं ही भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे दौलत की बात करें, दौलतमंद की बात करें, दुनिया की परिभाषा और परमार्थ संतों भक्तों गुरु पीर पैगंबरों की परिभाषा कुछ और होगी, इनकी नाप तोल कुछ और होगी, संसार की नाप तोल और उसके पैमाने वो कुछ और होंगे, वो सारे पैमाने दुनिया वालों के दुनियादारी पे आधारित होंगे, दुनियावी प्राप्तियां उपलब्धियों के ऊपर आधारित होंगे, धन दौलतों के ऊपर आधारित होंगे, झूठी शानो शौकत के ऊपर आधारित होंगे। लेकिन परमार्थ और संतों भातकों और महापुरुषों का पैमाना ये कुछ और होता है। तो यहाँ पर भी भाग्य की बात जब महापुरुष करते हैं, इसका मतलब कि वाकई ऐसे परम लक्ष्य को पा लिया गया है कि नहीं, मंजिले मकसूद को पा लिया गया है कि नहीं, निज घर को जान लिया गया है कि नहीं। अगर निज घर को जाना ही नहीं है तो निज घर में वासा कहाँ पर होगा, इस आत्मा को टिकाना कहाँ मिलने वाला है, इसको मोक्ष और मुक्ति कहाँ मिलने वाली है। अगर ये उपलब्धि हो गई तो बड़ा भाग्य मानो स्तन पावा को सार्थकता मिली है, ये तब वास्तविकता में पूर्णता मिली है। इसी तरह से दौलतमंद की बात करें तो वो भी दुनिया में दौलतमंद यानी कि चार पैसे हैं और बैंक बैलेंस है, कुछ और भी साधन पदार्थ हैं, उसको कह देते हैं कि ये धनाढ़ है, धन वाला है। लेकिन कबीर जी जैसे संत कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कि वाकई ही ये दुनियावी दौलतें होकर भी कोई कंगाल हो सकते हैं, जैसे दुनिया में होता है, होने को धनाढ़ होते हैं, लेकिन ये सच्ची दौलत नहीं है पास। ये राम रतन धन पायो जो मीरा भाई जिस दौलत के कारण अमीर हुई, वरना राजा के घर पैदा हुई थी, राजा के घर पैदा हुई इसलिए वो अपने आप को अमीर नहीं मान रही है। अमीर अपने आप को तब मानती है जब ये सच्ची दौलत उसके हिस्से में आ जाती है। तो राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो, कि ये कृपा हुई है मुझे, दौलत ये मिल गई है सच्ची, जो कभी जिसको आग ना जलाए, जिसको ना ये गले ना गले, ना ये सड़े, ना ये कहीं जाए, इसका कोई अंत नहीं है, जिस इसका ऐसी दौलत मुझे मिली है। तो अव साध संगत कहने का तात्पर्य यही है कि ये परिभाषा है महापुरुषों की दौलतमंद होने की, कि जिसके पास ये सच्ची दौलत आ गई वो धनाढ़ है, वो दौलत वाला है, वो कुटिया में रहकर भी महल वाला है। इस तरह से ये परिभाषाएं ये बिल्कुल भिन्न हुआ करते हैं। तो अव साध संगत महापुरुष संत जन वो निरंतर इन पहलुओं की तरफ ही हमें जागरूक ये करते आ रहे हैं, इसी और ही हमारा ये ध्यान अग्रसर करते आ रहे हैं कि हमने ये कदम उठाने हैं, हमने अपने मालिक प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ना है, हमने ये प्राप्ति कर लेनी है। ये प्राप्ति करने का ये अवसर हाथों से चला ना जाए, टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर भजियो ना खत पट्यो काल पहुँचो आए, कि काल के आने से पहले ये काम कर लेना है। चकवी ज्यों निस बिछड़े आए मिले प्रभात, जो नर बिछड़े राम से ना दिन मिले ना रात। तो इस तरह से वो चकवी और चकवा पानी के एक किनारे पर दूसरा दूसरे किनारे पर रात को बिछड़ जाते हैं, प्रभात होती है तो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जन्म संसार का ये इंसानी हमें मिला, उस रूप में तो प्रभात हो गई लेकिन फिर भी मिलन ना हुआ, फिर भी बिछोड़ा बना रहा, ये नाता टूटा रहा। तो इसलिए हमने इस जन्म का ये लाभ उठाना है, और इसलिए कहते हैं कि ये बहुत लाजिम काम है। बड़े काम करके ये ना मान बैठो कि बड़े काम कर लिए हैं, बहुत सारे काम कर लिए हैं, इतने काम कर लेने के बावजूद भी बुल्ले शाह जी जैसे संत ये कहेंगे कि अजय एडा तेरा कम कुड़े, कि कर लेना उस दम कुड़े जद घर आए मेहमान कुड़े, कि अभी ऐडा तेरा काम कुड़े। ऐडा कहते हैं कि बहुत सारा, तू बहुत सारा दुनियावी काम करके कह रहा है कि बहुत सारा कर लिया है, लेकिन ये कहा ये जा रहा है कि अजय ऐडा तेरा काम कुड़े, अभी तो बहुत काम पड़ा है, बहुत महत्ता रखने वाला काम अभी पड़ा हुआ है, अभी हुआ नहीं है। तो की कर लेना उस दम कुड़े जद घर आए मेहमान कुड़े, कि उस वक़्त फिर क्या करेगी जब घर मेहमान आ गए, यानी कि जम पहुंच गए और तेरी आत्मा का नबेड़ा होने वाला है और फिर कोई मोहलत मिलने वाली नहीं है, फिर कोई दलीलें चलने वाली नहीं है। तो ये काम अभी करने लायक है कि कर लेना उस दम कुड़े जद घर आए मेहमान कुड़े, कि जब ये मेहमान आ गए फिर कुछ बनने वाला नहीं है। काल करेंदे हंजनू अचिंते बाज पए, कि एक अचिंते ही ये बाजों का झपटा हो जाएगा तेरे ऊपर, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है, इस मालिक खालिक की पहचान करना बड़ा ज़रूरी है, जिसने ये जन्म दिया है इस मूल को जानना ज़रूरी है। इसीलिए करूँ विनंती सुन मेरे मीता संत, टहल की बेला इहां खाट चलो हरी लाहा आगे बसे सुहेला, कि आगे का भी सामान जुटा ले। वो इसी लोक में ही आगे का जुटाना होगा, लोक पर लोक को भी संवारना है तो लोक में ही कदम उठाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये कदम उठा ले इसी लोक में, ताकि परलोक भी सुहेला हो जाए। तो आओ साध संगत, जे दाज भी होनी जाएंगी ता किसे मूल ना पाएंगी, उथे पीनू किवें रिझाएंगी कुछ लै फकीरां दी मत कुड़े। कि जे दाज भी होनी जाएंगी, दाज के बगैर, दाज फिर वही दौलत की बात आ रही है, इसी सच्ची दौलत की बात आ रही है, कि दाज भी होनी जाएंगी, अगर दाज के बगैर, दौलत के बगैर गई फिर उथे पीनू किवें रिझाएंगी, फिर इस पिया को कैसे रिझाएगी। जे दाज भी होनी जाएंगी उथे पीनू किवें रिझाएंगी कुछ लै फकीरां दी मत कुड़े, कि कर लेना उस दम कुड़े जद घर आए मेहमान कुड़े। तो फकीरों की मत ले लें, ये संतों महात्माओं की मत ले लें, संतों के पैगाम को सुना अनसुना ना कर। सुना अनसुना करना बड़ा भारी पड़ेगा, तो इसलिए ये काम कर ले, इस कार्य को कर ले, इस कदम को उठा ले, इस मंजिल मकसूद को पा ले। और जब ये प्राप्ति हो जाती है तब धन्य होते हैं, तब वास्तविकता में हमारे सच्चे भाग खिल उठते हैं कि जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, इस मकसद को पूरा कर लिया गया, इस मालिक की पहचान हो गई आत्मा को, आत्मा ने अपने मूल को जान लिया। तो जहाँ पर आत्मा के हिस्से में आया वहाँ पर ये जीवन का सफ़र जो हम इस शरीर में तय कर रहे हैं, इस प्राप्ति के कारण इस लोक की यात्रा का भी महत्व बन जाता है, फिर इसका भी महत्व बन जाता है, क्योंकि अब जो यात्रा ये तय होगी, ये यात्रा तय होगी एक जागृति के तहत, एक जागरूक रहकर ये तय होगी, एक उजाले में तय होगी, कोई अंधकार में चल रहा हो और एक उजाले में चल रहा हो, एक अंधकार में चलने वाला ठोकरे भी खाता और भ्रम में भी रहता है, लेकिन उजाले में चलने वाला उसको सब कुछ ठीक ठीक नज़र आता है। तो इस तरह से बाकी का सफ़र अब उजाले में तय होगा, जब ये ज्ञान रोशनी मिल गई है, अब इसने जीवन को सही रूप दे दिया है, अब हम सही ढंग से सही दिशा की तरफ कदम धर रहे हैं, अब हमारे यात्रा जो तय हो रही है वो प्रेम भाईचारे की भावना से अब तय हो रही है, क्योंकि जो ज्ञान की ज्योति जगी इसने केवल आत्मा के भ्रम को नहीं मिटाया, इसने मन के भी भ्रमों को मिटा दिया, इसी एक ज्योत ने मन के भी भ्रम मिटा दिए, और मन के भ्रम ऐसे मिटे कि दीवारें गिर गईं, जाति पाति की दीवारें गिर गईं, مذہب و ملت کی دیواریں گر گئیں، تیرے میرے کا بھاؤ مٹ گیا اور مانوتا انسانیت کی ڈگر پر چلتے ہوئے اپنے لیے اور اوروں کے لیے سکھد ہوتے چلے گئے۔ اس پرکار سے یہ پھر اب جیون کا یہ سفر طے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس اجالے کو پراپت کر لینے سے، ایسی ایک جیون میں کرانتی گھٹت ہو جانے کے بعد، کیونکہ دنیا میں کتنی کرانتیاں گھٹت ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ کتنے کچھ ہمارے کارے آسان ہوتے چلے گئے۔ اگر انڈسٹریل ریولیوشن ہوئی تو انڈسٹریل ریولیوشن کے کارن آج جو کتنی مشینری، کتنے ٹرانسپورٹیشن کے سادھن، کتنے کمیونیکیشنز کے سادھن، یہ انڈسٹریل ریولیوشن کے کارن ہمارے کھیتی میں اور زیادہ اضافہ، اس کے لیے مشینری کا استعمال اتیادی، کتنے کتنے پہلو ہیں جس نے ہمیں سویدھائیں دے دی۔ اسی پرکار سے کہیں پر گرین ریولیوشن، کہیں پر وائٹ ریولیوشن، کتنی کتنی ریولیوشنز جس نے ہمارے کام پہلے کے مقابلے میں کچھ سرل کر دیے، کچھ سہولت مل گئی، کچھ آسان ہو گیا سلسلہ۔ اسی طرح سے یہ جب کرانتی سچے معنوں میں گھٹت ہوتی ہے ہمارے جیون میں، ایک اگیانتا کا اندھکار گیان اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تبدیلی یہ بھی آ جاتی ہے کہ نفرت کی بجائے اب پریم کا واسطہ ہو گیا ہے، کہ ایک پریم اب بس گیا ہے ہردے میں، اب نفرت کی آگ میں نہیں جل رہے ہیں۔ نفرت گھرنا ویر کا بھاو نہیں ہے، وہی بات کہ جاتی پاتی کا اب دیوار گر گئی، مذہب و ملت کی دیوار گر گئی، رنگ نسل کے آدھار کے اوپر کوئی گھرنا ویر نہیں، جیسے کہ رنگ کے اوپر آدھارت بھی آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے گورے چمڑی والے کالی چمڑی والوں کے ساتھ کتنا ویر اور نفرت کرتے رہے۔ ساؤتھ افریقہ کی مثال، جہاں نیلسن منڈیلا کا نام جگہ جگہ پر آتا ہے، کتنے وہاں پر ڈسکرمنیشنز، جہاں مہاتما گاندھی جی کے ساتھ بھی درویوہار کیا، ان کی چمڑی کے آدھار کے اوپر ان کو ایسٹ سے آیا ہوا مان کر، تو جہاں سے مہاتما گاندھی جی کے من میں اس وقت وہ ایک ایسا بیج انکرت ہوا جس کے کارن پھر آزادی کی باتیں اور اس کے لیے کتنے تپ تیاگ جتن آرمبھ ہو گئے۔ تو اس طرح سے رنگ نسل کے آدھار کے اوپر بھی کتنے بھید بھاؤ۔ تو اس طرح سے یہاں پر اس جاگرتی کی بات ہو رہی ہے، اس کرانتی کی بات ہو رہی ہے۔ جب اندھکار اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر واسطکتا میں نفرت پریم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اب کوئی نہ کو بیری، نہ ہی بیگانہ سگل سنگھوں کو بنائی، پھر کوئی پرایا، کوئی بیگانہ نہیں رہتا ہے، پھر سارے اپنے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنے نظر آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کیا، پھر ان کے ساتھ دروہار کیا، پھر ان کے ساتھ ہم پھر کس طرح سے وپریت ڈھنگ سے پیش آ پائیں گے، کیونکہ کس کو کیسر پتھر ماروں، کون پر آیا ہے، شیش محل میں ہر ایک چہرہ اپنا لگتا ہے، کہ پھر ہر کوئی اپنا لگتا ہے، نہ کو بیری نہ ہی بیگانا، کوئی پرایا کوئی بیگانا نہیں، سگل سنگ ہم کو بنے آئی۔ سگل کہتے ہیں سب، کہ اب سب سے بنے آئی ہیں، اب سارے ہی اپنے نظر آ رہے ہیں، اب وہی درشٹی مل گئی ہے، اب اپنتو کا بھاو مضبوط ہو گیا ہے، اب ایکتو میں استھاپت ہو گئے ہیں، جو ونس کا نعرہ مشن کے دوارا لگاتار دیا جا رہا ہے، ونس ایکتو، اب ایکتو میں استھت ہو گئے ہیں، اور اسی ایکتو کے کارن اپنتو بڑھ گیا ہے، اس کو مضبوطی مل گئی ہے، اپنے بن کا بھاؤ پیدا ہو گیا ہے، اب کس کو دھتکارا جائے، کس کے ساتھ درویوہار کیے جائیں، اب تو بھلائی مانگا جاتا ہے۔ پہلے برا مانگتے تھے، اندھکار جب تک تھا تب برا مانگتے تھے، دوسرے کے نقصان مانگتے تھے، دوسرے کو نیچی درشٹی سے دیکھتے تھے، اپنے مذہب کو اونچا، دوسرے کا نیچا، اپنی جاتی اونچی، دوسرے کی نیچی، यानी कि अभिमान भी करते थे, नफरत भी करते थे। लेकिन ये क्रांति अब घटित हो गई, ये बदलाव आ गया, ये जीवन में ऐसा बदलाव आ गया और बदलाव बेहतरी के लिए। जैसे अक्सर वो पंक्ति आती है कि चेंज फॉर द बेटरमेंट, कि चेंज आए ज़रूर लेकिन फॉर द बेटरमेंट, अच्छाई के लिए, उसके लिए चेंज आए। ये चेंज नहीं कि उजाला अंधकार में तब्दील हो जाए। अगर थोड़ी बहुत सहनशीलता है वो भी हाथों से चली जाए, वो चेंज फॉर द गुड नहीं है, वो नुकसान के लिए है। तो यहाँ पर कहते हैं चेंज आए लेकिन चेंज फॉर द बेटरमेंट, ये अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ये बदलाव आए। तो ये जो बदलाव जो महापुरुष भक्त जन जीवन में लाने के लिए प्रेरणा देते चले आ रहे हैं, ये अच्छाई के लिए है अपने और औरों के लिए, ये भलाई के लिए है अपने और औरों के लिए। इसी से ही हमारे जीवन में निखार आता है और हम औरों के लिए भी सुखदायी हो जाते हैं, फिर हम दुखदायी नहीं होते हैं, फिर हम दूसरे को आंसू नहीं देते, फिर हम दूसरों के होंठों को हंसी प्रदान करते हैं, हम औरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। अब हम दूसरे को धक्का दे के गिराने में यकीन नहीं रख रहे हैं, अब हम गिरे हुए को उठाने में को महत्ता देते हैं। इस तरह से बदलाव आ गया। कल तक हम दूसरे को छलनी करने में यकीन रखते थे और आज दिल करता है कि मरहम का रूप बन जाएं, जहाँ जहाँ जख्म हैं उनको भरते चले जाएं। ये बदलाव आ गया। तो क्या ये बदलाव बुरा है? क्या ये बदलाव गलत है? हाँ, वो ज़रूर मानते हैं जो अंधकार से प्यार करते हैं, जो खुद अज्ञानता में विचरण करते हैं, उनको ये बदलाव पसंद नहीं आता। इसीलिए ईसा मसीह जी को सूली पे लटका देंगे, हज़रत मोहम्मद साहब के परिवार को प्यासा मारने की कोशिश करेंगे, कईयों को तत्ते तवे पे बिठाएंगे, मीरा के पास जहर का प्याला भेजेंगे, उनको नहीं प्रिय, उनको नहीं है। पापी जैसे कहते हैं कि एक जो पापी भगत ना भावे, हरि पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे जय बिगंध तह जाए, कि उनको तो नहीं पसंद आता है। लेकिन जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं वो वास्तविकता में इस बदलाव का हमेशा स्वागत करते हैं। और ज़रूरत तो इसी की है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे किसी को राहत मिल रही है, कोई सुकून मिल रहा है, कोई चैन मिल रहा है। जिस तरह से मासूमों की जानें ली जाती हैं, जिस तरह से विस्फोटों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से जंगें होती हैं, जंग मगरिब में हो या मशरिक में, तो कहते हैं कि किसी मगरिब में हो जाए, मशरिक में हो जाए, ईस्ट में हो जाए, वेस्ट में हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो ये एक अमने आलम का कहते हैं कि नुकसान तो उसका ही है। एक आलम का अमन नष्ट हो रहा है, संसार का अमन नष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं, हिंसक प्रवृत्तियां कितनी हमें जगह जगह पर देखने को मिल रही हैं। ज़रा सी बात एकदम से हिंसक हो जाता है, वाणी के द्वारा भी और कर्म के व्यवहार के रूप में भी हिंसक हो जाता है। तो इस तरह का माहौल और वातावरण जब संसार में हम देखते हैं तो ये बदलाव ये मुबारक है कि अब हिंसा की बजाय अहिंसक हो रहे हैं और दिलों को दुखाने के बजाय दूसरों को राहत दे रहे हैं, उजाड़ने के बजाय बसाने का योगदान दे रहे हैं, दीवारें खड़ी करने की बजाय अब पुल बना रहे हैं, अब समीपता होती चली जा रही है, नज़दीक आते चले जा रहे हैं। वो दीवारों को जो कल तक बना रहे थे आज पुल बना रहे हैं। इसीलिए मिशन के अनेकों नारे हैं, इनमें से नारा ये भी एक कि द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, जो अभी कनाडा में कैलगरी में दास जब वहाँ था 2 और 3 जुलाई को, तो वहाँ पर यूथ कॉन्फ्रेंस में यही एक थीम लिया गया था। वहाँ जन्मे पले नौजवान वो इसी पहलू को सामने ला रहे थे कि द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, कि ये धरती दीवारों के बगैर इसकी ज़रूरत है। तो ये दीवारें गिराकर जो अब पुल बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्रिजेस पीस बाय पीस, तो ब्रिजेस यानी कि पुल बना रहे हैं। आप जानते हैं कि पुल बनते हैं तो उधर वाला इधर आता है, इधर वाला उधर जाता है, या बीच में जाके मिल जाते हैं, मिलाप हो जाते हैं। अगर पुल ना हो तो वो उस तट पे, मैं इस तट पे। अगर पुल नहीं है, उसकी बजाय दीवार है, फिर तो देख भी नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो इस तरह से दीवारें कल तक बनाने में यकीन रख रहे थे और आज पुल बना रहे हैं, आज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे का भला मांग और भला कर रहे हैं। ये कितना बड़ा बदलाव, और इसी बदलाव की इस धरती को ज़रूरत है। और सही मायनों में जो इस प्रकार से ऐसे कदम उठा लेते हैं, ऐसी उनके जीवन में ऐसी एक क्रांति घटित हो जाती है, वाकई वो इस धरती के लिए वरदान बन जाते हैं और वो सच्चे धर्म की पहचान बन जाते हैं। क्योंकि धर्म जिसको सच्चा कहा जाता है, वो यही तो उसका कार्य है, यही तो उसका काम है। अगर ये काम करने की बजाय वो उलट देन दे रहा है, तो वो तो धर्म भी कहलाने का हकदार नहीं है। तो धर्म तो सच्चा वही है जो हमें हकीकत में स्थित कर दे, जो इंसान और इंसान को गले मिला दे, जो आत्मा और परमात्मा की दूरी मिटा दे। सच्चा धर्म तो वही है। लेकिन आज धर्म भी जो रूप धारण कर चुके हैं, उसकी लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और वो देख भी रहे हैं, और उसकी तपश हम महसूस भी कर रहे हैं कि किस तरह से मज़हब और धर्म वो जो देन दे रहा है, किस तरह से एक प्यार के बजाय नफ़रत मनों में भर रहा है, दूरियां पैदा करता चला जा रहा है। तो जो दीवारें खड़ी करना सिखाता है, वो हरगिज़ धर्म नहीं हुआ करता है। जो नफ़रत हमारे मनों में भरता है, वो धर्म हो ही नहीं सकता है। वो किसी गलत फहमी में जी रहे हैं लोग डेकेड से, सेंचुरी से भी, जो इस तरह की मान्यताओं से युक्त होकर ये सोचते हैं कि हम हैं जो सच्चे धर्म की पालना कर रहे हैं, जो मासूमों की और छोटे छोटे बच्चों की जान लेकर भी जन्नत के हम वासी बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते जा रहे हैं, जानते नहीं हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, कि जन्नत मिलनी है या दोजक की आग में जलना पड़ेगा, नहीं जानते। तो इस तरह से कहने का भाव कि जो सच्चा धर्मी होता है, उसकी पहचान ही यही होती है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो एक ऐसे पहलू जिनका अभी जिक्र हुआ, प्यार वाला, भाईचारे वाला, मिलवर्तन वाला, हलीमी वाला, अपनाने वाला, ये वास्तविकता में वो धर्म की सच्ची पहचान बनते हैं। तो अवसाध संगत, एक संसार में जिस तरह से धर्म बन चुके हैं, और वो तो हमें कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, जो हमें उस अंधकार में और ज़्यादा धकेलते चले जा रहे हैं, वो तो देन उनकी ऐसी हो गई है जैसे वो पंजाबी की पंक्ति दास चंद दफ़ा पहले भी दोहरा चुका है, जिसमें एक इंसान बैठा हुआ, वो दरी के ऊपर बैठा हुआ और उसने ऊपर लोई ओढ़ी हुई थी, और एक इंसान आया वो उसके नीचे से दरी निकाल रहा है और ऊपर से लोई उतार रहा है, और वो लोई और दरी को पकड़ रहा है जिसकी थी, और वो कह रहा है कि ओ की करी जाना है, की करी जाना है, लाई लोई जाना है, खिंची दरी जाना है, कि इस प्रकार से सब कुछ ही तू लेता चला जा रहा है, छीनता चले जा रहा है, इसी तरह से हमसे भी छीनता चले जा रहा है। हमारे पास अगर प्यार या मिलवर्तन था वो छीन लिया जाता है उनके द्वारा जिन्होंने उल्टा हमें एक सदमार्ग पर चलाना था, इंसान और इंसान को मिलाना था, उन्होंने ही मज़ो मिल्लत की दीवारें खड़ी कर दें, जाति पाति की दीवारें खड़ी कर दें, और इंसान के द्वारा इस धरती को पलीत करने में इस तरह से हमें प्रेरित किया। तो आज सच्चे धर्म की पहचान भी जाननी है क्या होती है, जैसे सच्चे दौलत की बात हुई, जैसे एक ऊंचे स्थान की बात हुई, जो पैमानों की बात दास ने आरंभ में कही, तो आज भी उसी रूप में हमने सच्चे धर्मी होने की पहचान ये बनानी है, और वो होगा तभी जब हम सही मायनों में प्रेम करुणा दया के भाव से युक्त हो जाएंगे, हितकारी बन जाएंगे, नुकसान दूसरों का नहीं सोचेंगे, और इस धरती को हम स्वर्ग बनाने में अपने योगदान हम देते चले जाएंगे। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ कांगड़ा में आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई। और ये पिछले चंद रोज़ जो बीते, जैसे दास ने कहा कि ये कुछ अधिक दिन मिल पाए यहाँ हिमाचल प्रदेश में, भिन्न भिन्न स्थानों पे जाने का जो अवसर मिला है, जो पिछले कुछ वर्षों में नहीं मिल पा रहा था, 2 बरस पहले ज़रूर शिमला से ऊपरी हिस्सों में स्पीति इत्यादि की तरफ चंद स्थानों पे जाने का अवसर ज़रूर मिला था, लेकिन उससे पहले भी अक्सर प्रांतीय समागम एक स्थान पे हो जाता था और वहीं से लौट जाते थे, लेकिन अलग अलग स्थानों पे जाना ये बहुत लंबे समय के बाद ये एक अवसर ये अभी मिला है। हालांकि ध्यान तो और भी दिन बिताने का था, दिल्ली से ध्यान था 5-6 तारीख को निकलने का, लेकिन वहाँ पर कुछ ज़रूरी कार्य थे जिसके कारण एक हफ्ता वहाँ से रवानगी लेट हुई, वरना उस हिसाब से पूरा प्रोग्राम भी बन चुका था, मनाली कुल्लू तक और इधर जम्मू तक भी जाने का ध्यान था, और इस तरह से वो एक हफ्ता हाथों से निकल गया, इस कारण और अधिक स्थानों पे जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पर भी जाने के मौके मिल रहे हैं तो बहुत खुशी हासिल हो रही है कि मिलजुल कर ये घड़ियाँ इस तरह से स्वर्गमय इसमें समय बिताने को मिल रहा है, और ये सत्य का संदेश मिलजुल कर जन जन तक पहुँचाने में सभी योगदान दे रहे हैं, और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए अपने योगदान दे रहे हैं। तो दास अंत में यही प्रार्थना अरदास करेगा कि दातार कृपा करे आप सभी को ये एक अवस्था प्रदान किए रखे, ये लगन बनाए रखे, ये रंग चढ़ाए रखे, और संसार के ऊपर ये उपकार करने के ये जज्बे भी बने रहें, और साथ ही साथ ये तन मन धन के सुख भी दातार सभी को प्रदान करे। सत्संग जी धन्य।